चैतन्यमनोपिष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपमदामरुदातिस्वदातिकं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यानन्दाश्चैतन्यजगदाधिपवासवदेवोर्मतु हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट नंबर 40 के पहले भगवान ने समझ बताए थे तीन प्रकार के सुखों की भी। तो ऐसे भगवान तीन गुणों में क्या था? सुख, सुख के पहले
धृति,
धृति के पहले बुद्धि, तीन प्रकार की बुद्धि, बुद्धि के प्रकार पहले कर्ता, अकर्ता, कर्म, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति और सुख। इन सबके तीन तीन प्रकार भगवान ने बताए। लेकिन आचार्य इसके ऊपर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई एक पृथ्वी में ऐसा देखा जाता है या फिर पर्टिकुलर किसी एक लोक में ऐसा देखा जाता है, ऐसा नहीं है। संसार के आप किसी भी कोने में जाओ, किसी भी लोक में जाओ, स्वर्ग लोक से लेकर के पाताल लोक तक हर एक व्यक्ति तीन गुणों के अधीन होता है, तीन गुणों से प्रभावित होता है। ऐसा देखा जाता है कि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव स्वर्ग लोक में कम होता है कंपैरेटिवली, लेकिन होता तो है, कोई मुक्त नहीं होता। क्योंकि ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड का सर्व श्रेष्ठ लोक में माना जाता है, ब्रह्मलोक इज द बेस्ट। और ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी रजोगुण के गुणावतार है, अर्थात बिना रजोगुण के वो सृष्टि का सृजन नहीं कर सकते, तो उनमें भी रजोगुण का प्रभाव देखा जाता है। फिर शिव जी में संहार करने के लिए तमोगुण का स्पर्श लेना पड़ता है सृष्टि को संहार करने के लिए, इसलिए शिव जी तक तमोगुण से प्रभावित है। जैसे भी शिव जी प्रभावित नहीं है, लेकिन उनको संहार करने के समय पर इसका स्पर्श लेना पड़ता है तमोगुण का। तो इस तरह से देखा जाए तो रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अगर ब्रह्मा जी और शिव जी तक अगर होता हो, तो फिर उनके नीचे के जो लोक या नीचे के जो लोक के निवासी है उन लोगों में तो स्वाभाविक है। उदाहरण के रूप में इंद्र जो कि स्वर्ग का राजा है, वो भगवान का भक्त है, लेकिन इंद्र स्वाभाविक रूप से जिनके पास धन होता है, जिनके पास सौंदर्य होता है, जिनके पास ऐश्वर्य होता है, वो इंद्र तृप्ति के प्रति आकर्षित होता है। तो इंद्र का भी हिस्ट्री देखो तो ऐसा ही है, वो पृथ्वी पे आके अपनी इंद्र तृप्ति करता है, या फिर यहाँ पर वो कौन से मुनि है अहल्या के पिता गौतम ऋषि की पत्नी यह पृथ्वी पे थी, तो वहां से भाई साहब यहाँ पर आकर के गौतम ऋषि का वेश लेकर के और पत्नी के साथ संबंध लिया उनकी पत्नी के साथ। तो इसका अर्थ क्या है? इंद्र रजोगुण से प्रभावित है, फिर तमोगुण अज्ञानता। जब भगवान वहां पर यहाँ गोवर्धन पर्वत उठाया तो वो इंद्र के रूप पर पूरा वर्षा गिरा दिया, पूरे ब्रजवासी को परेशान किया। और जब उनको पारिजात का वृक्ष उठाया तभी भी फाइट करने आ गया, नहीं ले जा सकते। तो ये सब हम देखते हैं कि ये तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में होता है। कई बार जैसे प्रहलाद की माता कयाधु, तो वो कयाधु को किडनैप करने चला गया था इंद्र, बोले मैं इसके बच्चे को मार डालूंगा। क्यों भी मार डालोगे, क्यों मार डालोगे इस बच्चे को? बोले वो असुर है, उसका बेटा उससे डबल होगा, तो इसको तो खत्म करना चाहिए। तो ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञानता है। तो ये रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव संसार में हर एक जगह पर है, हर एक वस्तु में है। जैसे प्रभुपाद जी ने बताया था कि वृक्षों में भी होता है, पक्षियों में होता है, पेड़ों में होता है, पशुओं में होता है, सब जगह ये तीन वो बात हुआ था हमारा राइट डिस्कस कि कुछ कौवा है और एक हंस है, फिर एक आम है और एक कैक्टस है या फिर और कुछ है, फिर एक गाय है और एक सुअर है, गधा है। तो इन लोगों का प्रभाव जो है वो तीन गुणों से सब मिश्रित है, सब 84 लाख योनि में सब मिश्रित है। तो इसलिए ये तीन गुणों का प्रभाव संसार में होना स्वाभाविक है, किंतु हर एक व्यक्ति का जो ये सृष्टि की रचना करने का जो मूल लक्ष्य है वो है एक के बाद एक गुणों में क्रमशः प्रगति करना, उद्देश्य है तीन गुणों से मुक्त होना। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि फर्स्ट कैंटो में कि तदारजस तमो भावा काम लोभादेश चेते एते रनाविद्धम सितम सत्वे प्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण भक्ति का आचरण करने के माध्यम से श्रीमद् भागवतम का जो प्रभाव है उसका प्रभाव ऐसा है कि मनुष्य धीरे धीरे रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त होता है। दा रजस तमो भावा और इसका परिणाम इसके लक्षण क्या है, काम लोभादयश्च। इसके लक्षण है कि वो काम लोभ काम क्रोध लोभ आदि जो 6 सत्व है इसका सीधा सिम्टम है। अगर आप कोई व्यक्ति को रजोगुण और तमोगुण से अधीन देख रहे हो इसका अर्थ है कि उसके लक्षण कैसे होते हैं, वो काम क्रोध लोभ से प्रभावित होता है। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है। और असलियत में हम सब में ये कहीं ना कहीं देखा जाता है, वही वो बड़े दुर्लभ होते हैं भगवान के शुद्ध भक्त कि जो लोग इस तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। इसलिए उनके लिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाठो आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष यही सब। जो जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो महाभागवत है, जो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत है, भगवान का अध्ययन जैसे श्री प्रभुपाद जी, तो ऐसे जो भक्त होते हैं उनमें मनुष्य के जो 4 त्रुटियां हैं वो उनके उनमें नहीं पाई जाती, अर्थात वो लोग काम क्रोध आदि से मुक्त हो गए हैं। काम का प्रभाव उनको परेशान नहीं कर सकता, क्रोध उनको परेशान नहीं कर सकता, उनको किसी चीज का लोभ नहीं होता, ईर्ष्या द्वेष से वो मुक्त होते हैं, वो किसी गलत वस्तु से आकर्षित नहीं हो जाते। ये उन लोग का है कि जो रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो गए। तो काम लोभादेश चेत एते रणाविद्धम सितम सत्वे प्रसिद्धति, और इस तरह से वो व्यक्ति सत्व में स्थिर हो जाता है, जो कि इसे ध्यान आएगा ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। और कृष्ण भक्ति में जब आगे बढ़ता है तब मत भक्तिम लभते बना, फिर वो भक्ति में बना। तो उद्देश्य सृष्टि का ये है कि इस सृष्टि में जितने भी लोग हैं विशेष करके ह्यूमन, उन लोगों में भी ये गुणों के आधार के ऊपर उनमें डिविजन्स बने हैं इन गुणों के आधार पर, और इन गुणों के आधार के जो डिविजन्स है उनका उद्देश्य है कि वो क्रमशः धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करें। अगर वो शुद्ध करने के लिए उनका संसार के प्रति विरक्ति या वैराग्य यह होना आवश्यक है, और उसी का अब भगवान आगे चर्चा करने वाला है कि भक्ति अगर सर्वश्रेष्ठ है तो जो अलग अलग प्रकार की वृत्ति वाले, अलग अलग प्रकार की टेंडेंसी वाले, अलग अलग प्रकार की क्वालिटीज वाले जो क्लासेस ऑफ ह्यूमन है, उन लोगों को क्या उनका उपाय क्या है, वो कैसे अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। यस,
आपने जैसे बताया कि सब जगह प्रभाव है तीनों गुणों का, तो जैसे 4 लाख योनियां है तो बरूपा बता देते कि मतलब उसमें अनसिविलाइज्ड है, फिर सिविलाइज्ड, फिर ऐसे, तो उसमें भी ऐसा है कि जो एकदम तमोगुणी है वो जैसे अफ्रीका में एकदम अज्ञान में है, जो रजोगुणी है वो डेवलप कंट्रीज अमेरिका यूरोप में है, और सत्वगुण में है वो कोई अच्छी जगह
हिमालय में,
ऐसा
नहीं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से किसी एक गुण में नहीं होता है,
तो ज्यादा प्रभाव,
हाँ ज्यादा प्रभाव में, तो आपको वो तो आपको विदेश जाने की भी आवश्यकता नहीं, आपको यहीं पर वो सब मिल जाता है। जैसे प्रपद गुणों के आधार पे जगहों का भी वर्णन किया है कि फॉरेस्ट इज सत्वगुणी, जो वन प्रदेश है वो रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ है, फॉरेस्ट इज सत्वगुणी। फिर ये सिटीज जो है, जैसे ये ब्रिक्स और क्या बोलते कॉन्क्रीट के बिल्डिंग्स जो है, हम यहाँ पर हम रहते वो रजोगुणी है, मोर ऑफ पैशन। और जो पाप खाना है या फिर स्लॉटर हाउस है या फिर बार है या फिर प्रोस्टिट्यूट हाउस है, ये सब के आसपास रहना या उसके पास रहना या उग्र कर्म के पास रहना, ये तमोगुणी है। जैसे कई बार स्लम में देखा जाता है, ऐसा स्लम जो एरिया होता है उसमें क्लीनलीनेस नहीं होती है, पाप भी होता है सब प्रकार का, और कोई नीति वीति नहीं होती, ऐसे धर्म नहीं करते, पालन नहीं करते धर्म का, तो दैट इज तमोगुणी। एंड टेम्पल इज विशुद्ध सत्व, आध्यात्मिक प्लेस, टेम्पल में रहना। तो ये अलग अलग प्रकार के है। जैसे आपको यहाँ पर अहमदाबाद में अगर आप देखो, जैसे आप सीजी रोड या इस प्रकार के कुछ एरिया से, या फिर आजकल तो सब जगह फैल गया है, तो आप इतना सारा यू नो इल्यूमिनेटिंग सारी लाइट्स होती है, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, यू नो पूरा बहुत ऑपुलेंट दिखता है, आपको लगता है कि यू नो जैसे ये भी विदेश से कम नहीं है, ऐसा आपको लगेगा। तो ये सब रजोगुण के प्रभाव में। जैसे मैं एक बार वो टाइम स्क्वायर में गया था, जो पूरे वर्ल्ड का रजोगुण का अड्डा पूरे विश्व का है, केवल एक चौराया लेकिन उसको पूरे वर्ल्ड का अड्डा माना जाता है, रजोगुण का, रजोगुण और तमोगुण का।
कीर्तन अच्छा करता है,
वहां कर दिया, ऑन कर दिया, बट लोग करता भी निरंतर करते टाइम स्क्वायर पर, करता पूरा क्राउडेड होता है हमेशा वो जगह। सो
वन तो कहीं रहे नहीं,
वन है, वन बहुत कम है, लेकिन वो बचेगा पता नहीं, कलयुग जैसे बढ़ेगा वैसे सब खत्म हो रहा है धीरे धीरे धीरे। यस, आज लोग शहर से दूर जाते हैं रहने के लिए, लेकिन वहां जहाँ लोग जाते हैं वहां डेवलप हो जाते हैं, फिर और दूर जाते फिर उधर डेवलप हो जाते।
ऐसे कहा जाए कि मंदिर में सत्वगुण का प्रभाव रहेगा,
हाँ मंदिर आध्यात्मिक वातावरण देता है, इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं है, वहां तीन गुणों का प्रभाव नहीं है। लेकिन अधिकतर तक इस कहने का तात्पर्य कि भगवान के विग्रह जो है वो तीन गुणों से मुक्त है, भगवान के विग्रह, इसलिए उसका प्रभाव सबसे ज्यादा होता है।
वृंदावन मायापुर,
हाँ, लेकिन अगर वृंदावन में आप मंदिर के बाहर जाओगे तो आपको सामने रजोगुण का मिल जाएगा, वहाँ मार्केट भी है, सब है, यू गेट सम एवरीथिंग यू गेट देयर,
धाम में सत्वगुण मिल जाएगा,
होता है ऑफ कोर्स, लेकिन धीरे 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 उसका जो प्रभाव है वो कमजोर हो रहा है। जैसे रजोगुण और तमोगुण जो है वो धाम में भी प्रसिद्ध प्रचलित हो रहे, वहां पर भी सिनेमा हाउस बन रहे, वहां पर भी स्विमिंग पूल्स बन रहे, गोवर्धन जैसी जगह पर वो खेलने का गोल्फ कोर्स वो बन गया है, गोवर्धन बहुत फेमस है, गोवर्धन, तो वो वहां पर भी इस प्रकार से ही चल रहा है। तो क्या इसका तात्पर्य क्या हुआ, रजोगुण और तमोगुण सब जगह जा रहे हैं। सो दिस सोसाइटी इज ऑल्सो डिवाइडेड इन फोर डिफरेंट क्लासेस, दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू थ्री गुणस। सो लेट अस टॉक फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 41।
हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है।
हाँ, यहाँ पर कहा गया है कि उनके गुणों के अनुसार भेद किया जाता है, ना कि उनके कार्यों वो उनके जन्म के अनुसार। ये जो वर्णन हो रहा है, जिसके पहले भगवान ने एक यही चीज पहले बताई थी, चातुर्वर्ण्य, चातुर्वर्ण्य माया सृष्टम गुण कर्म विभाग, जन्म विभाग ऐसा नहीं कि जन्म के आधार से। जब प्रभुपाद यहाँ पर पृथ्वी पर थे तब इसका बड़ा प्राधान्य था, लोग जन्म के आधार पर मानते थे। आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अभी भी यही मानते हैं कि जन्म के आधार पर ही गुणों का अस्तित्व, और जो बच्चे कुचे हैं उन लोग को इससे कोई लेना देना नहीं। ये जन्म के आधार पर होने के कारण कुछ निराश लोग, फ्रस्ट्रेट लोग, वो लोग कहते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी, सोसाइटी क्लासलेस होनी चाहिए, वो ऐसा मानते हैं कि इसमें कोई होना ही नहीं चाहिए। कि और हम देख भी रहे, इसका दुरुपयोग करने वाले लोग भी है, क्लास के कास्ट 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 जो है उसके आधार पर रिजर्वेशन के लिए फाइट्स होती है। लेकिन ये सारी जो सिस्टम है वो सिस्टम ही गलत है। तो ये इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की विचारधारा वाले लोग है, लेकिन अधिकतर लोग जो है समाज में वो लोग यही मानते हैं कि जन्म के आधार से जिसका बेटा जैसा होगा वैसा वो माना जाएगा। लेकिन भगवान यहाँ पर फिर से कह रहे, पहले भी एक बार बताया, फिर से कह रहे, गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है, प्रकृति के गुणों के अनुसार उनका स्वभाव और उनके उत्पन्न गुण और उनके कर्म, उस गुणों के द्वारा प्रभावित हुए कर्म, उसके आधार पर उनका डिविजन्स होता है। सो टेक्स्ट नंबर 42, इसमें अभी भगवान 42 से लेकर के 44 तक तीन चारों वर्ण का बताते हैं गुण। तो लेट्स टॉक फ्रॉम टेक्स्ट नंबर 42।
शांति प्रियता, आत्मसंयम, तप, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, आ सर्व स्वाभाविक गुणों छे के जेमना थकी ब्राह्मण कर्म करे छे। वीरता, शक्ति, संकल्प,
वो बात में करते है। तो शम दमस तपस्वचम क्षांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। नौ क्वालिटी है, नौ गुण है इसमें। तो भगवद गीता में नौ गुण बताए हैं, कुछ जगह श्रीमद भागवतम में कुछ जगह छह गुण बताए हैं, कुछ जगह बारह गुण बताए हैं, लेकिन मोटा मोटी ये मुख्य गुण है जो नौ गुण यहाँ पर बताए गए हैं। तो जो ब्राह्मण होता है ये गुणों को अनुकूल करना ये उसका जिम्मेदारी है। इस प्रकार के गुण ही हैज टू डेवलप। अभी यहाँ पर जो बताया गया है शांति प्रियता, आत्मसंयम, ये सब अलग अलग क्वालिटीज मेंशन की गई है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य में भी कहते हैं, इसके लेक्चर में, इसके विषय में प्रभुपाद के कई लेक्चर भी है। सो जैसे लेट अस टॉक स्टार्ट फ्रॉम समा, समा दमा तपस्वचम, ऐसा है ना। समा के विषय में प्रभुपाद कहते हैं कि वन शुड बी ट्रेन टू नॉट टू बी डिक्टेटेड बाय सेंसेस। समा का अर्थ होता है इंद्रियों का वश करना, इंद्रियों के स्वामी बनना। जो भी हमारी कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय है उन सब पर हमारा वश होना चाहिए, अर्थात मनुष्य जो है वो इंद्रियों का गुलाम नहीं होना चाहिए। के जैसे आंख की इंद्रियां, कान की इंद्रियां इत्यादि। फिर दमा के विषय में जब बात आती है तो दमा के विषय में मन को कंट्रोल में करना, समा का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना, दमा का अर्थ होता है मन को कंट्रोल में करना। मन जो है वो आदेश देता है और हम उसके आदेश में बह जाते हैं। तो ये वास्तव में जो ब्राह्मण बनना चाहता हो या ब्राह्मण दीक्षा लिया है या लेना चाहता है उनको इन सब गुणों को अनुकूल करना पड़ता है। ब्राह्मण इनिशिएशन का अर्थ ये नहीं होता है कि अब तुम ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण इनिशिएशन का अर्थ होता है कि अब तुम ब्राह्मण बनना शुरू किया। ब्राह्मण जब यज्ञोपवीत दिया जाता है, आपका मंत्र दीक्षा दी जाती है कान में, तो उसका अर्थ होता है कि आप ब्राह्मण बनने के लिए शुरुआत किया। तो धीरे 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 ये जो 9 क्वालिटीज है उसको डेवलप करने का प्रयास कर रहा है। ये सारे 9 क्वालिटीज जो है उसमें इसको मैं सिद्ध कर रहा है। लेकिन कई बार देखा जाता कि बक लोग इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, लाइटली ले लेते मीन्स बक लोग कई बार ऐसा सोचते हैं, सबके विषय में नहीं कह रहे, कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमने देखा है, वो क्या करते हैं, वो लोग क्वालिटी वॉलिटी तो सब साइड में होता है, उनके मन में एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है। 16 माला इस्कॉन में जुड़े तो पहले 16 माला करनी पड़ती है, 16 माला करने के बाद फिर 2-4 धक्के खाने पड़ते हैं, सीनियर को प्रणाम करना पड़ता है और पेपर सब देना पड़ता है, तब जाके हरिनाम दीक्षा हो जाती है। हरिनाम दीक्षा हो जाने के बाद कुछ समय जाता है, कुछ मंदिर में सेवा देते है, ड्यूटी किचन में थोड़ा कुकिंग कर लेते हैं या फिर ऐसा कुछ कर लेते हैं। और अभी बीच में नया किसी ने शुरू किया है वो भक्ति शास्त्री का, तो भक्ति शास्त्री भी करना पड़ता है, वो भक्ति शास्त्री पढ़ लेते हैं और उसमें जो आता है पता नहीं, भाई हमारा तो सर्टिफिकेट मिले बहुत हो गया, तो भक्ति शास्त्री कर लेते हैं और वो खत्म हो जाए कोर्स और हमारा तो सीधा फिर ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा ले लिया मीन्स इस्कॉन का प्रोग्रेशन चार्ट खत्म। अभी हमारा करियर टारगेट पूरा अचीव हो गया, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। अब जैसे जीते थे पहले भी जैसे जीते थे अभी ऐसे ही जीते रहेंगे। तो ये समस्या होती है। ये सब कब होता है, जब उनको ट्रेन करने वाला जो भक्त होता है ना वो इसकी महत्ता नहीं समझाता। क्योंकि ट्रेन करने वाला अगर शुद्ध नहीं है तो ट्रेन करने वाला भी ऐसा सोचता है, अरे भाई कैसे भी करो मार के मियां बनाओ, लेकिन हमारा भक्तों का संख्या बढ़ना चाहिए, हमारा ग्रुप बड़ा बनना चाहिए, ये ऐसा सोचते हैं। तो इसमें ऊपर सीखने वाले का भी दुर्भाग्य है, सिखाने वाले का भी दुर्भाग्य है। और सीखने वाले बेचारे उसको पता नहीं, उसको बोलो 2+2=6, अच्छा 6 होता है तो 6 काउंट करके चलता है फिर, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि 2+2=4 होता है, तो उसी दिशा में चलता रहता है। तो इसलिए जैसे कोई ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहता है तो ये 9 क्वालिटीज को उसको अनुकूल करना पड़ता है, इसको इग्नोर नहीं कर सकता वो। अगर समझ लो कोई भक्त इसको इग्नोर करता है तो क्या होगा, अगर समझ लो कोई ब्राह्मण दीक्षा लिया और इसको इग्नोर करता है, ये इसको इतना ध्यान नहीं दे रहा है तो क्या होगा, वो भी हो सकता है। और कुछ
दूसरे लोग देखेंगे तो मतलब उनको देखेंगे ये ब्राह्मण दीक्षित है फिर भी इनका बिहेवियर ऐसा है।
यस,
गुरु के प्रति एक तरह से
अपराध कर रहा है, वो ब्राह्मण नहीं बन पाता है, वो ब्राह्मण नहीं बन पाता है। क्योंकि ब्राह्मण दीक्षा में ये शर्त है कि ये 9 चीज को आपको अनुकूल करना है, अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते तो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। एक्चुअली ये बीमारी ठीक करने का ये एक प्रकार का स्टेप है, आप एक और एक स्टेप ले रहे हो ब्राह्मण इनिशिएशन, जिसमें आपको अब ये गुणों को अनुकूल करना है। पहले आपने भजन क्रिया शुरू की थी, अभी अनर्थ से निवृत्ति में ये सहायता करते है। क्षमा दमा, दमा का अर्थ है मन को वश में करना। इसका अर्थ ये नहीं कि आप इंद्रिय और मन के दास बने रहो और भले ना अपना ब्राह्मण आपका आप ब्राह्मण हो क्योंकि आपका ब्राह्मण में जन्म हुआ है, ब्रह्म बंधु बोला जाता है उसको, ब्राह्मण पिता माता होता है गुणों के आधार से, लेकिन उसका बेटा जो होता है वो अश्वत्थामा जैसा निकलता है जिसने उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र फेंका था, तो उसको ब्रह्म बंधु माना जाता है। ब्रह्म बंधु का अर्थ होता है ब्राह्मण का बंधु, अर्थात ब्राह्मण जैसा लेकिन ब्राह्मण नहीं। इसका अर्थ तो का जन्म हुआ है लेकिन उसके कर्म ब्राह्मण जैसे नहीं है, उसके गुण ब्राह्मण जैसे नहीं है। सो ब्राह्मण का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि उसका मन शांत होता है, उसका ये सबसे पहला क्वालिटी होता है ब्राह्मण का कि वो मन शांत होता है उसका। वो रजोगुण और तमोगुण के आधार पर वो गिर नहीं जाता, वो शांत रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका मन शांत होता है इसका रजोगुण तमोगुण का प्रभाव होता ही नहीं उसमें, लेकिन रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को सहन कर सकता है वो। जैसे रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को भेजा था अपना पत्र लेकर के द्वारका कृष्ण के यहाँ पर, वो प्रपोजल थी कि आइए ले जाइए, लेकिन वो भगवान ने वो लेटर तो देखा लेकिन आते ही सबसे पहले वो ब्राह्मण का स्वागत किया और ब्राह्मण को ये प्रश्न पूछा था कि क्या आपका मन शांत है। ये प्रश्न कृष्ण ने पूछा था ब्राह्मण को, श्रीमद् भागवत में है। तो इसका अर्थ क्या है कि उसमें प्रभुपाद कहते भी कि ब्राह्मण जो है आइडियली उसका मन शांत होना चाहिए। शांत का अर्थ ये नहीं होता है कि वो गुस्सा नहीं करता, शांत का अर्थ होता है कि वो विचलित नहीं होता, वो पीसफुल होता, रेस्टलेस नहीं होता। रेस्टलेस वो क्या बोलते हैं, रेस्टलेस चंचल नहीं होता, वो चंचल नहीं होता, उसका मन स्थिर होता है। वो ब्राह्मण का एक क्वालिटी। इसका अर्थ ये भी नहीं होता, आप सब ये क्वालिटीज पढ़ेंगे प्रभु जी ये तो सब एक्सपर्ट सब बड़े बड़े लोग की क्वालिटी बता रहे हो, ऐसा तो मेरे लाइफ में थोड़ी कभी होने वाला है, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे भाई हम तो ये ब्राह्मण इनिशिएशन की बात कर रहे हैं, सब ब्राह्मण इनिशिएशन के लिए ये सब चाहिए। ब्राह्मण इनिशिएशन लेना तो ये करना पड़ता है प्रभु जी, हमारे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि जो ब्राह्मण इनिशिएशन लिया और इसमें से आप भी बता रहे उसमें से कुछ भी नहीं है, बहुत से एग्जाम्पल है। हाँ तो वो एग्जाम्पल आप ऐसे एग्जाम्पल को आप क्यों फॉलो कर रहे हो, आप सही एग्जाम्पल को फॉलो करो ना कि जो सही में इसको फॉलो कर रहे। सो समा दमा तपस 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 का अर्थ होता है तपस्या। समो दमा तपह तपस्या का अर्थ होता है आप समा दमा कब कर सकते हो तपस्या के बिना। प्रभुपाद सेड कि मेरा एक गुरु भाई लंदन में प्रीच करने गया था, वांट टू प्रीच इन लंदन एंड लॉर्ड जैकलैंड, उस समय कोई वहां का कोई बहुत बड़ा होगा लॉर्ड जैकलैंड करके, तो उनसे प्रभुपाद जी के गुरु भाई ने बातचीत किया था। तो वो उसने ऐसा कहा कि गोस्वामी जी क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हो। सो उनके गुरु भाई ने कहा हाँ अवश्य क्यों नहीं, आप चार प्रकार के जो आदत है वो छोड़ दो। तो उन्होंने कहा कि कौन सी चार, वो तो चार नियम बताए उनको, मांसाहार नहीं, नशा नहीं, युवा नहीं, व्यभिचार नहीं। तो सोचे बिना मुंह से ही निकल गया ये तो असंभव है, वो मुंह से ही निकल गया, क्लियरली बोल दिया इट इज इम्पॉसिबल, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता, हमसे ये हो ही नहीं सकता, ये तो हमारा जीवन है, ये अगर ये निकल गया तो जीने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं फिर। और शायद हमें अभी भारत में रहते हैं, लेकिन आप तो विदेश की धरती में सब देखा है आपने, आप विदेश गए हो कई बार, तो आपको पता है कि उन लोगों को इस प्रकार का मेंटालिटी है कि इसके अतिरिक्त जीवन में कुछ होता ही नहीं है। अगर आप उनको कभी देखोगे विदेशी लोगों को, इसके अतिरिक्त तो उनका कोई जीवन ही नहीं है, क्योंकि वो जन्म लेते हैं मांस खाके, थोड़े बड़े होते तुरंत व्यभिचार करने लगते हैं, थोड़ा बड़ा होता है गैम्बलिंग वगैरह शुरू हो जाता है, नशा तो उनके आम बात है, बच्चा भी करता है। अब सोचिए ये सारी चीज ये उनके लाइफ का एक पार्ट है। जैसे आप नमक खाते हो, कोई आपको बोले कि अगर आपको ब्राह्मण बनना है तो नमक खाना बंद करना पड़ेगा, तो आपके लिए एक बार धक्का लगा है, नमक ही नहीं खाना है कभी, जैसे हम नमक खाते हैं ना वैसे वो लोग मांस खाते हैं, लाइक दैट। सो But at the present moment, hundreds and thousands of boys are giving up. आज प्रभुपाद बता रहे थे उस समय कि आज हजारों की संख्या में ये युवा लोग सब कुछ त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और इन लोगों ये सारे लोग एग्री किया है हमने जो बोला उसको। यदि भी प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने उनको कोई रिश्वत नहीं दी है, ऐसा नहीं कि भाई तुम पैसा लो लेकिन नशा छोड़ो, तुम पैसा ले लो मांस खाना बंद कर दो, ऐसा कोई रिश्वत नहीं दी। वो लोग दे रहे, मैंने उनको पैसे नहीं। फिर प्रभुपाद ने कहा मैं एक पुअर भारतीय हूँ, एक गरीब भारतीय, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या दूंगा आपको, आई एम अ पुअर इंडियन। लेकिन उन लोगों वो लोग एग्री हो गए कि नहीं आप जो बता रहे हो वही उसको हम पालन करेंगे। तो इसको बोलते हैं तपस्या। तपस्या करना बड़ा आवश्यक है भक्तों के लिए, तपस्या बड़ा आवश्यक होता है। तपस्या का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको निर्जल एकादशी कर रहे हो इसलिए आप तपस्या कर रहे हो इतर, या फिर आप ठंडी में ठंडे पानी से नहा लेते हो इसलिए आप तपस्या कर रहे हो, ये सारी तपस्या है। लेकिन मूल तपस्या का अर्थ होता है मन और इंद्रियों को वश में लाना, मूल तपस्या ये है। और मूल तपस्या का अर्थ होता है चार नियम का स्ट्रिक्टली पालन करना, ये मूल तपस्या है। और भक्तों के लिए ऐसे तो तपस्या कहीं होती है जैसे 14 माला का जप करना, भगवद गीता श्रीमद भागवतम को पढ़ना, तो इस तरह से अपने मन को और इंद्रियों को अपने आदेश के अनुसार उसको कंट्रोल करना, उसको तपस्या बोलते हैं। वाणी ये सो इंद्रियां है ना, अलग अलग प्रकार की इंद्रियां है, देखना सूंघना बोलना खाना सुनना चलना, ये सब अलग अलग प्रकार की तपस्या है, इंद्रिय और मन को वश में लाना है ना। सो फिर होता है शौचम, समा दमा तपस शौचम। शौचम का अर्थ होता है कि मन और शरीर की शुद्धता, शौचम। और प्रभुपाद और सोलवें अध्याय में हमने शौचम के विषय में पढ़ा था कि मन और शरीर की शुद्धता और हमारे व्यवहार में शुद्धता, दैट इज ऑल्सो शौचम। मन की शुद्धता के विषय में हमारे पहले चर्चा हुआ था, मन की शुद्धता का अर्थ होता है शास्त्र के आधार पर जीवन जीना या फिर गुरु के आदेश का पालन करना। शरीर की शुद्धता का अर्थ होता है कि कम से कम दिन में 2 बार स्नान करना, नियमित रूप से नाखून बाल इत्यादि सब काटना, नियमित रूप से सिद्धांत के अनुसार जो भी हमारा शरीर के शुद्धिकरण की आवश्यकता है उसको पालन करना। जैसे कोई ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण दीक्षा लेता है, तो उसको 3 बार गायत्री मंत्र जप करना होता है दिन में। तो अपवित्र अवस्था में गायत्री जप नहीं करना चाहिए, तो इसलिए अगर कोई शौच क्रिया भी जाता है तो उसको स्नान करना पड़ता है तभी जाकर वो गायत्री जप कर सकता है, नहीं तो गायत्री जप नहीं कर सकता वो, या तो फिर उसको फिर मंत्र टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है, जो मंत्र स्नान वो यूज करना पड़ता है। लेकिन वो बिना स्नान किए गायत्री जप नहीं कर सकता, क्योंकि गायत्री जप इज एज ग्रेट डेटी वर्शिप, ऐसा माना जाता है। इसलिए ब्राह्मण को कम से कम 2 बार, ऐसे 3 बार स्नान करना चाहिए लेकिन कम से कम 2 बार उसको स्नान करना चाहिए मिनिमम। तो इस प्रकार से बाह्य शुद्धि होनी चाहिए, और वो हमेशा साफ साफ सुथरे कपड़े पहनता है। फटे हुए कपड़े चलेगा लेकिन मैले कपड़े नहीं चलेंगे, पसीने वाले कपड़े नहीं चलेंगे। कम कपड़े समझ लो कि उसके पास केवल धोती है और एक उपवस्त्र है वो चलेगा, लेकिन वो गंदे कपड़े नहीं पहनेगा, ये ब्राह्मण का एक क्वालिटी होता है शौचम। हमने बात किया था जैसे कोई व्यक्ति अगर नाक में हाथ डालते हैं, मुंह में हाथ डालते हैं, कान में हाथ डालते हैं तो उसको धोना पड़ता है बिना, अदरवाइज वो चंडाल माना जाता है और ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ब्राह्मण का क्वालिटी है कि वी हैव टू फॉलो दी स्टैंडर्ड्स। प्रभुपाद कहते थे कई बार अपने शिष्य को वृंदावन में, वहां वृंदावन में उस समय तो बहुत स्ट्रिक्ट थे सब, ये विदेशी लोग आए थे वो लोग तो मुंह लगा के पानी पीते थे जैसे आजकल हम लोग पीते हैं, तो मुंह लगा के पानी पीते थे। और शुरू शुरू में से प्रभुपाद ने कहा कि ये लोग यहाँ पर आपको देखेंगे तो आपको गालियां देंगे, यहाँ पर कोई मुंह लगा के पानी नहीं पीता, सब लोग ऊपर से पानी पीता है, सबका सब बच्चा भी ऊपर से पीता है पानी, यही हमारा कल्चर था पहले, ऊपर से ही पानी पीना है, मुंह लगा के पानी नहीं पीता थे कोई, बट दैट्स फाइन। कहने का तात्पर्य है कि शुद्धिकरण आवश्यक होता है, अगर आप मुंह लगा के पानी पीते हो फिर आपको भगवान की सेवा करनी है तो आपको हाथ धोना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि शौचम, एक बार धारित्री माता ने कहा था कि ये प्रोपन डर्बन लेक्चर में बताया कि अब कलयुग आ रहा है या कलयुग आ चुका है, मैं बड़ी विक्षिप्त हूं, हो सकता है धरती माता होगी, बट एनीवे धारित्री लिखा है, डोंट नो हु इज इट,
धात्री इज नॉट,
धात्री इज नर्स, आई एम वेरी डिस्टर्ब दैट पीपल आर लॉसिंग देयर ओरिजिनल क्वालिटीज, लोग अपने जो मूल गुण है अच्छे को, एक अच्छे गुण की जो पहले हमारी पहचान थी मनुष्य की, वो गुण लोग खो रहे और धीरे धीरे मनुष्य होते हुए भी वो लोग पशुओं के गुण एडप्ट कर रहे हैं, पशु जैसी वृत्ति बढ़ रही है, हमारे जो ओरिजिनल गुण थे वो सब नष्ट हो रहे हैं धीरे धीरे कलयुग में। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे पशु जिस तरह का जीवन जीता है धीरे धीरे लोगों की मेंटेलिटी उसी दिशा में जा रही है, वो उसी तरह से जीना शुरू किया है अब पशु की तरह, और कई बार तो वो लोग पशु के जीवन को अच्छा मानने लगे, पशु अच्छा जीता है हमसे, उसको अच्छी सुविधाएं भोग करने की हमारे से, वो ऐसा मानने लगता है,
फ्रीडम का ज्यादा होते
हैं, मुक्त विहार चाहते हो, मुक्त विहार चाहते हो, हर एक वस्तु में उनको कोई धर्म नहीं चाहिए, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, उनको कोई नियम नहीं चाहिए, लेकिन बिना नियम के तो आपको ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी भी नहीं चलाने देता, और हम चलते कि हम हमारा जीवन जीना चाहते बिना नियम के, आप एक एक रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते बिना नियम के, और हमारी पूरी लाइफ हम बिना नियम के जीना चाहते, तो क्या होता है ट्रैफिक पुलिस तो आपको पकड़ लेता है और सीधा फाड़ देता है या फिर आपको पकड़ लेता है, जो वहां पर और गवर्नमेंट है तो एक सुप्रीम गवर्नमेंट भी है कि जो आपके फ्री अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट को तुरंत पंच कर देता है, चाहे वो कोरोना वायरस के रूप में आता हो या फिर किसी और रूप में आता हो, वो फिर पनिश कर देता है उसको। सो दिस क्वालिटीज डू नॉट नीड टू बी एक्वायर, ऐसे गुणों की हमें आवश्यकता नहीं थी उसको ग्रहण करने की, जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज जो है उसको बाहर से कहीं लाना नहीं पड़ता, ये हमारे भीतर थी, हमारे भीतर है भी, लेकिन जैसे कोई छुरी होती है, छुरी का जो शार्पनेस क्या बोलते धार, धार चला गया तो काम नहीं करती है ना छुरी, ब्लेड वो काम नहीं करती, आप सब्जी भी नहीं काट सकते उससे, उसके अगर शार्प नहीं है तो एज, तो क्या करना पड़ता है उसको बाहर से कहीं धार खरीद करके डालना नहीं पड़ता, उसके ऊपर वो घिसना पड़ता है, अगर समझ लो कि उसके ऊपर जंग लग गया है या कचरा लग गया है तो क्या करना पड़ता है उसको साफ करना पड़ता है, उसको घिसना पड़ता है, और क्या परिणाम आता है जैसे उसको घिसते हो या उसके कचरा निकालते हो उसका जंग निकालते हो तो वो फिर से धार उसकी जैसी थी वैसी आ जाती है। तो इसी तरह से हमारा जो मटेरियल कंटेमिनेशन है, हमारा जो दोष है, हमारे जो ये सब दुर्गुण है, इसके कारण हमारी जो मूल चेतना है, जो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज थी, क्षमा दमा तप शौचम, ये क्वालिटीज जो है वो उसकी धार चली गई है, क्योंकि बहुत सारा कचरा जंग लग गया है इसके ऊपर दुर्गुणों का, गलत आदतों का, इसको हटाना कृष्ण भक्ति के माध्यम से तो अस्वाभाविक रूप से वो चमकने लगेगा फिर से, फिर आपको लगेगा ये सब कहां से आया, ये कैसे इतना समय दबा तपस सोच में कहां से आया, ये सब आ गया, ये था ऑलरेडी उस भक्त में था ही, लेकिन वो डर गया था बेचारा, लेकिन अब फिर से इसको उजागर किया गया है। सो उसकी शार्पनेस को हमें पुनर्स्थापित करना चाहिए, फिर वो बताना आगे बताया, हे राजा बट द पासिंग ऑफ टाइम लैंड एंड अदर मटेरियल पोजेशंस आर प्योरिफाइड, समय के जाने के साथ साथ धरती या लैंड और बाकी सब भौतिक पंचसंस है वो शुद्ध होता है। अगर आप धरती को शुद्ध करना चाहते हो या हमारे भौतिक समझ चीजों को शुद्ध करना चाहते तो समय जैसे जैसे गुजरता है वो धीरे 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 शुद्ध होता जाता है। स्नान के द्वारा शरीर शुद्ध होता है, स्वच्छता के माध्यम से अस्वच्छ वस्तु शुद्ध होती है, प्योरिफिकेटरी सेरेमनीज के माध्यम से ये संस्कार विधियों के माध्यम से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या के माध्यम से इंद्रियां शुद्ध होती है, पूजा और दान के माध्यम से ब्राह्मण को दान और पूजा देने के पूजा के माध्यम से भौतिक धन शुद्ध होता है, संतोष के द्वारा मन शुद्ध होता है, अगर आपको संतोष प्राप्त हो तो मन शुद्ध होता है, और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के द्वारा आत्मा शुद्ध होती है। संस्लोक का अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का पालन करता है तो उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, और शुद्ध होने का अर्थ क्या होता है, वो तीन गुणों से मुक्त हो जाता है, उसको शुद्ध होना बोलते हैं। दिस वॉज इन डर्बन 1975। समा दमह तपस्सौचम शांतिर क्षांतिर, क्षांतिर का अर्थ होता है सहनशीलता। भक्त को सहनशील होना चाहिए। प्रभुपाद एक एग्जांपल दिए कि अगर मैं मेरे बच्चे को प्यार करता हूं, मेरा कोई बेटा है मैं उसको प्यार करता हूं, तो ये स्वाभाविक है कि मैं उसको प्यार करता हूं, और फिर वो मर गया, और अगर समझ लो कोई किसी का बेटा मर गया और वो व्यक्ति रो रहा है क्योंकि उसका बेटा मर गया, अगर वो रो रहा है तो क्या वो मूर्ख है? प्रभात कह के नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो मूर्ख है, वो रो रहा है, इसका ये नहीं मूर्ख है, किंतु ये भौतिक अफेक्शन है, भौतिक आकर्षण या भौतिक आसक्ति या भौतिक प्रेम है, भौतिक अफेक्शन है। इसलिए कृष्ण ऐसा एडवाइस करते भगवद गीता में कि इसको तितिक्ष करो, इसको सहन करो। वो रोता है वो ठीक है, वो क्योंकि उसका अफेक्शन था, लेकिन ऐसी जो घटनाएं होती है लाइफ में उसको सहन करो, अर्थात मात्र स्पर्शां सुखं संतोषं सुख दुखदा आगम पाइनो, ये आएगा और जाएगा ये निश्चित है। अगर आप आज हंस रहे हो तो कल आपको रोना है, ये निश्चित है। अगर आप आज रो रहे हो तो कल आपको हंसना, ये निश्चित है। इसलिए ये नहीं होगा कि हर एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी रहता है, ये पॉसिबल ही नहीं है इस संसार में, ये हो ही नहीं सकता। आगम पाइन, आगम का अर्थ होता है कि जो वो आता है और वो चला जाता है, वो आता है बिना पूछ के आता है और जाता है वो भी बिना पूछ के, और वो उसका अपना आने का कोई तिथि नहीं होता है और उसकी जाने की भी कोई तिथि नहीं होती है। यद्यपि एक रूप से देखा जाए तो सुख और दुख हमारे कर्मों के अधीन होते हैं, और हमने पास में जो कर्म किए इसका रिकॉर्ड हमारे पास, हमें नहीं पता क्या है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी आता है वो कभी परमानेंट रहता ही नहीं है। आपको कोई सुख मिला, ऐश्वर्य मिल गया, तो ये मत सोचना कि ये रहेगा, ये एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। और आपको कुछ गरीब हो गया, आपको कोई संकट आ गया, क्राइसिस आ गया, ऐसा कुछ हो, तो ये नहीं सोचना कि ये रहेगा, ये भी नष्ट हो जाएगा, ये भी चला जाएगा। जैसे आप लोग कोई 2001 के अर्थक्वेक में कोई थे यहाँ पर आपसे, यस, वो एक महीना दो महीना आपको आपका अनुभव होगा ना कि आपने कैसे व्यतीत किया है पहला महीना या एक दो महीना, राइट, जिसमें आपको डर रहता था कुछ ना कुछ हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है ना, इस प्रकार का। क्योंकि मैं खुद देखा है कि एक एक महीने तक तो लोग घर के घर में सोते नहीं थे, घर के बाहर सोते, यहाँ मैं भी बाहर ही सोता था, घर में नहीं सोता था, बाहर सोता था। तो आप सोच सकते हो ना लोग कैसे डरे हुए थे पूरे सब जगह, तो कभी कभी जैसे उस समय मेरी आयु 19 साल की थी, शायद 18 साल की थी अभी। उस समय मैं ऐसा सोच लगता कि अब तो ये कभी समाप्त ही नहीं होगा, अब ये अर्थक्वेक लैंड बन गया है, तब तो ये आता रहेगा, निरंतर आता रहेगा, पता नहीं प्रकृति का क्या प्रकोप हुआ, तब ये रहने लायक नहीं बचा। लेकिन वो जो भय का जो माहौल था, एक महीना दो महीने के बाद सब कुछ जैसे थे वैसे हो गए, तो कोई चीज परमानेंट नहीं रहती, सब कुछ चला जाता है, भय भी चला जाता है, दुख भी चला जाता है, रोग भी चला जाता है, जीवन भी चला जाता है, सुख भी चला जाता है, कुछ नहीं रहता। आगम पायनो नित्यम, इसलिए तांतितिक्षस्व, उसको सहन करो। तांतितिक्षस्व भारत, विशेष करके जो भगवान का भक्त होता है उसका एक आभूषण है, ये गुण है कि तितिक्षव कारुणे का, बहुत सहनशील होता है, बहुत सारे उदाहरण, जैसे नित्यानंद प्रभु को पत्थर मारा बधाई ने, सहन कर लिया। फिर हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में पीटा गया, सहन कर लिया। तो अगर कोई भक्त का कोई अपमान भी करता है तो वो सहन कर लेते हैं। 5 पांडव इतना सारा उनको परेशान किया कौरव ने, उसने सहन कर लिया सब कुछ। तितिक्षव भक्त जो होते हैं वो अपने अपमान को, अपने कष्ट को, वो सबको कंप्लेन नहीं करता है। जैसे भक्त एडवांस होता है वो तो बोलता भी नहीं है कि उसको कष्ट हो रहा है, वो बोलता भी नहीं है। जैसे प्रहलाद अपने कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने की भी प्रार्थना नहीं करता है, प्रभु मुझे कष्ट होता है मुझे मुक्त करो, ऐसी प्रार्थना भी नहीं करता है वो। इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमें ऐसे सब करना है, कष्ट होता है तो आप प्रार्थना कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कहने का अर्थ होता है कि जो भक्त एडवांस हो, जैसे माधवेंद्रपुरी कभी भिक्षा मांगने भी नहीं जाता, अयाचक ऐसे सन्यासी थे। कोई खाना देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो ऐसा नहीं कि सोचते रहेंगे आज तो कोई खाना देने नहीं आया, मांगूंगा तो नहीं, मेरा नाम अयाचक है, मांगूंगा तो नहीं, लेकिन मन में सोचता है ऐसा नहीं।
आप लोग मांगने के लिए तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मतलब ऐसे, मैंने कभी कभी ऐसा भी सुना है किसी भक्त से ही कि भगवान सबके पिता है, हमारे भी है, तो अगर कभी कुछ मांगना भी है तो ऑफकोर्स और देवतागण से नहीं जाना है, उन्हें ही से मांगना है, मगर जरूरत ही क्या है क्योंकि उनको सब पता ही है। तो मतलब मांगने से क्या कुछ लॉजिक नहीं मुझे लगता है मांगने का,
मांगने का लॉजिक नहीं, लेकिन कई बार कष्ट के बहुत किसी को जैसे बहुत कष्ट आ जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से सहायता के लिए भगवान की ओर देखता है, स्वाभाविक रूप से। जैसे गोपियां थी तो उनको जब डर लगा तो वो तुरंत कृष्ण को जाकर पकड़ लिया, अर्थात तमाल के वृक्ष को जाकर पकड़ लिया। तो ये स्वाभाविक लक्षण माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है, भय में है, तो शरण लेता है भगवान की रक्षा करने के लिए, हे कृष्ण रक्षा कीजिए ऐसे। तो कृष्ण को अच्छा भी लगता है ये सब, कोई उनको बोलता है मेरी रक्षा करना हो तो इसे बोलते हैं ना, कृष्ण केशव पाही माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, हमारी रक्षा कीजिए ऐसे। तो इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर कोई भक्त ये जानता है, जैसे सब जानते हैं, तो एडवांस डिवोटी भी ये जानते हैं कि कृष्ण सब कुछ जानते हैं, अगर वो मुझे रखना चाहेंगे रखेंगे, मारना चाहेंगे तो मारेंगे, इसलिए उसको कुछ प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए प्रार्थना होती है उसके पास, क्या प्रार्थना होती है, जैसे प्रभुपाद प्रार्थना करते थे, हे कृष्ण मुझे कभी माया से हमेशा मेरी सुरक्षा करना, ऐसी प्रार्थना करते, माया मुझे स्पर्श न कर ले, फिर हे कृष्ण इन सब लोगों का उद्धार करना, इन सब पाप की कृपा देना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। सो दे प्रे लाइक दिस, दे आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम कृष्ण, सो दिस इज आउट ऑफ द वे, देन कृष्ण इज ऑब्लाइज्ड, क्योंकि वो खुद के लिए कोई मांग ही नहीं रहा है, लाइक दैट। सो विशेष करके जब हम वैष्णव जीवन स्वीकार करते हैं तो इस्कॉन विद इन इस्कॉन सोसाइटी में अगर कोई ब्राह्मण शिक्षण लेना चाहता है लेता है, तो उसको अगर कोई उसका अपमान कर दे तो उसको सहन करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं कि टिट फॉर टैट नेले पे जरा, अगर कोई भक्त आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो बोले हम इसको लेसन पढ़ाएंगे, अब इसको इसको भी दिखाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। ये सब वृत्ति ब्राह्मणों में नहीं होती है। ब्राह्मण जनरली रिटेलिएट नहीं करता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रतिशोध नहीं लेता। ब्राह्मण जो होता है वो प्रतिशोध नहीं लेता किसी चीज का। आपने उसका गलत कर दिया, उसको बड़ा दुख हुआ, उसका बहुत नुकसान हो गया, लेकिन वो सामने प्रतिशोध नहीं करना चाहता है वो, कि भाई इसको प्रतिशोध करो। यहां तक कि वो ऐसा भी नहीं बोलता है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरा इतना सब नुकसान किया ना, मैं तो कुछ नहीं करूंगा तुम्हें, लेकिन भगवान तो सब देखते हैं ना, हार नहीं तो कल इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, वो ऐसा भी नहीं सोचते।
ऊपर से अच्छा सोचता है।
हाँ,
वो चोरों की बात है ना कि चोर ने ब्राह्मण के हाथ काट के भी उनको गड्ढे में डाल दिया था। फिर वो राजा आया था, राजा वो ब्राह्मण को लेके वो राज दरबार में ले गया, फिर वहां भी वो राजा कुछ धन दे रहा था, तो वहां भी चोर आए, तो ब्राह्मण ने वहां देखा था कि इन चोरों को ज्यादा धन देना, इनको ज्यादा जरूरत है।
yes.
तो चोर डर डर के वहां जा रहे थे।
यस, ऐसे ब्राह्मण जो होता है वो वैष्णव, विशेष करके वैष्णव ब्राह्मण, उसमें तपस्या बड़ी इम्पोर्टेंट वस्तु होती है। सहन शक्ति, सहन कर सकता है वो। सहन करने का अर्थ क्या होता है कि अधिकतर केस में भक्तों के आचरण को ही सहन करना ही हमारे लिए चैलेंज होता है। उन लोग को सहन करना चाहिए, भक्तों के आचरण को क्यों सहन करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति रोग में रोगिष्ट अवस्था में, हर एक व्यक्ति, चाहे वो दीक्षित हो, नॉन दीक्षित हो, ब्राह्मण दीक्षित हो, कोई भी हो, हर एक व्यक्ति रोगी अवस्था में है। कौन सा रोग है? बहु रोग। इसलिए ये नहीं हो सकता कि हर एक व्यक्ति का आचरण 10 out of 10 होगा, है ना। सबके आचरण ऐसे नहीं मिलेंगे आपको कि आप प्रभु जी ये तो एकदम नंबर वन है, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए कोई चार 10 में से 4 वाला है, कोई 10 में से 6 वाला है, कोई 10 में से 1 वाला है, तो ऐसे सब प्रकार के मल्टीपल पीपल आते हैं, इंटरनेशनल वेराइटीज आती है हमारे सामने। तो ये वेराइटीज जो होती है, ये अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं, उनके आचरण, उनकी वृत्तियां, उनके बैकग्राउंड्स, उनके नेचर, ये सब अलग अलग होता है, और उनकी सोच, ये सब अलग अलग, और ये इन लोगों को हमें उनके साथ डील करना है। तो हमें इसको ये सहन करना सीखना चाहिए। जो सहन कर सकता है वही हरिनाम उच्चारण कर सकता है। तरोर अपि सहिष्णुना, वृक्ष के जैसा सहनशील, इससे हमें आपको अपने आप को प्रस्तुत करना चाहिए सहन करने के लिए। हो सकता है कि आपका ब्लड गर्म हो जाएगा किसी चीज को देख करके, लेकिन उसको सहन कर लेना। प्रोवोकिंग सिचुएशन में सहन शक्ति होनी चाहिए। सो शांतिर आर्जवम, आर्जवम का अर्थ होता है बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। और उसका ऑपोजिट क्या होता है? सिंप्लिसिटी का अर्थ ऑपोजिट होता है डुप्लिसिटी। डुप्लिसिटी, व्हाट इज डुप्लिसिटी? नहीं, डुप्लिसिटी मींस
दोगलापन।
या तो ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत बड़ी बाधा के रूप में ये प्रकट होता है। आर्जवम अगर किसी में नहीं होता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति जो है वो खतरे में पड़ जाती है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये धोखा देने की जो वृत्ति है ना हमें, ये बाय डिफॉल्ट हमें है ही, हर एक व्यक्ति बद्धात्मा है, इसलिए उसमें यह होता ही है। इस प्रकार की वृत्ति होती है धोखा देने की, झूठ बोलना, धोखा देना, दिस आर द नॉर्मल क्लोथ कपड़ा। सो ये जो धोखे देने वाली जो वृत्ति है उसको धीरे 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 करके नष्ट कर देना है, धोखा देने का, इसको मिनिमाइज करने प्रॉपर बोल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं अर्जम। अर्जम का अर्थ होता है सद्रता, सद्रता और विरक्तता, डिटैचमेंट, विरक्तता छोड़ देने का विरक्तता। प्रभुपाद इसके विषय में बताया, अर्जम के साथ साथ इसके विषय में बताया, विरक्तता के विषय में भी। तो ये पूरी जो होल, द होल सिस्टम इज डिटैचमेंट फ्रॉम मैटर, ये सारी सिस्टम मैटर को डिटैचमेंट करने के लिए है। अगर हम भौतिक जीवन में थोड़ा भी, स्लाइटली थोड़ा भी अगर आ सकते हैं, तो हमें फिर से दोबारा शरीर धारण करना पड़ेगा, चाहे वो ये शरीर हो, वो शरीर हो, 84 लाख किस्म के शरीर होते हैं। इसलिए विरक्त तो डिटैचमेंट होना आवश्यक होता है। ये आध्यात्मिक साक्षात्कार का प्राथमिक सिद्धांत है कि विरक्त तो होना चाहिए। तो कृष्ण ये कृष्ण भावनामृत साइमल्टेनियस एक साथ विरक्त कर रहे हैं, पदार्थ से विरक्ति करा रहा है और कृष्ण से आसक्ति करा रहा है। जिस मात्रा में हमारा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा, उतनी मात्रा में हम भौतिक रूप से विरक्त होते जाएंगे। परम दृष्टवा निवर्तते, इसलिए भौतिक विरक्ति जो है वो कुछ मैकेनिकल नहीं है, या उसके लिए कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे आप कृष्ण को प्रेम करना शुरू कर देते हो, वैसे 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 आपकी विरक्ति अपने आप होती जाती है। भौतिक चीजों के प्रति आपकी जो लगाव है वो अपने आप धीरे 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 नष्ट होता जाता है। अगर आप कृष्ण को प्रेम करते हो, 1% यहाँ आपके पास 100% प्रेम है, 1% अगर आपने कृष्ण को दे दिया तो माया के प्रति आपका 99% हो गया प्रेम आपको। अगर आपने 2% कृष्ण को दे दिया तो अभी आपके पास 98% हो गया। तो ये प्रोपोर्शनेटली जितना प्रेम आप कृष्ण को करते हो उसके ऑपोजिट माया का प्रेम अपने आप नष्ट होता है। प्रॉपर ने एग्जाम्पल दिया कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को प्रेम करता है, प्यार करता है, और फिर वही लड़का अब दूसरी किसी लड़की को प्यार करता है, तो क्या देखा जाता है कि दूसरी लड़की को जितना प्यार करता है तो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनेटली आगे वाली लड़की से वो प्रेम कम होने लगा। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि आपके पास है तो 100%। ऐसा तो है नहीं कि आप डबल कैपेसिटी है, 200% है, ऐसा तो है नहीं। तो इस तरह से हमारा आकर्षण जो है वो आकर्षण जैसे प्रेम कृष्ण के प्रति होता है, तो ये प्रपस से सिमिलरली इफ यू इंक्रीज योर लव फॉर कृष्ण देन यू डिक्रीज योर लव फॉर नॉनसेंस। अगर आप कृष्ण को प्रेम करना शुरू कर दो तो बाकी सब वैराग्य अपने आप आता है, ऑटोमेटिक आता है। लेकिन हमें प्रेम करने की वृत्ति है, चाहे वो भगवान को करे या कुत्ते को करे, लेकिन वो प्रेम करने की वृत्ति है। परम दुष्वा निवर्तते, सो शांति आर्जम एवच ज्ञानम। यस,
आर्जम में तो मतलब जैसे इसका एक जैसे आचार और प्रचार दोनों एक साथ चलते, एक डेफिनेशन वही जो हम बोलते हैं।
यस यस, आर्जम का डुप्लीसिटी नहीं होने का अर्थ यही होता है कि मिथ्याचार नहीं होना चाहिए। आप जो बोलते हो कुछ और करते हो कुछ और, मुख में राम राम बगल में छुरी, वो आर्जम के विपरीत है। मिस आप बोलते हो कुछ और, आपके आचरण में तो ऐसा देखा नहीं जाता। अभी ये हो सकता है कि वो भक्त शायद ऐसा बोले कि मुझे आपको सबको ऐसा करना चाहिए, यद्यपि वो स्वीकार करता है कि मैं भी 100% प्योर नहीं हूं, लेकिन हमें ये करना चाहिए, तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसा दावा करता है कि मैं 100% प्योर हूं, फिर उसके आचरण में कमियां देखी जाती है, त्रुटियां देखी जाती है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मिथ्याचारी है, वो ढोंगी है, वो बोलता है कुछ और करता है कुछ और। तो इसको डुप्लीसिटी बोलते हैं, ये नहीं चलेगा। सिंप्लिसिटी, आर्जम का अर्थ होता है सिंप्लिसिटी, और सिंप्लिसिटी का अर्थ ये भी होता है कि वो अपनी आवश्यकताओं से संतुष्ट होता है। उसको ज्यादा भागता दौड़ता नहीं है, सिंपल आर्जवम। फिर ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ होता है भगवान के विषय में, भगवान के संबंध के विषय में, आत्मा के विषय में, संसार के विषय में, सबके विषय में ज्ञान होना। जैसे भगवद गीता पढ़ रहे हो तो ये ज्ञान है,
पांच चीजें गीता में दिए,
हाँ वो ज्ञान है। यस, तो ज्ञान, उसको ज्ञान बोलते हैं। और फिर उस ज्ञान का प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उपयोग करना, इसको विज्ञान बोलते हैं। उसी को प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना उस चीज को, उसको विज्ञान बोलते हैं। और अस्तिक्यम, ज्ञान विज्ञानम अस्तिक्यम, अस्तिक्यम का अर्थ होता है आध्यात्मिक साहित्य में पूर्ण श्रद्धा होना, भगवान में पूर्ण श्रद्धा होना, कृष्ण में पूर्ण श्रद्धा होना, उसको बोलते हैं आस्तिक। और जो जो नहीं फॉलो करता उसको बोलते हैं नास्तिक, जो वैदिक शास्त्र को फॉलो नहीं करता है। ये सारी क्वालिटीज जो होती है वो वैष्णव के शरीर में पाई जाती है, इसलिए वैष्णव जो होता है वो परफेक्ट ब्राह्मण माना जाता है। प्रहलाद महाराज में इस सब प्रकार की क्वालिटीज थी। वैष्णव जो होता है हमेशा सबका ऐसी होता है, वो किसी का द्वेष नहीं करता। वहां छह गोस्वामियों के लिए कहा गया है, धीरा धीरा जनप्रिय प्रिय करो, धीरा धीरा। जो लोग भक्त थे वो तो छह गोस्वामी को पसंद करते ही थे, सब उनको प्रेम करते। लेकिन जो भक्त नहीं थे, जो लोग इंद्रिय भोग में फंसे हुए पड़े थे, जो लोग जिन्हें सब वैष्णव क्वालिटीज नहीं थे, ब्राह्मण क्वालिटीज नहीं थे, जो भक्त नहीं थे, भगवान के शरणागत नहीं थे, वो लोग भी छह गोस्वामियों को प्रेम करते थे। धीर अधीर जनप्रिय, क्योंकि उनके गुण ऐसे थे, इसलिए लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। सो भक्त जो होता है वो इक्वल होता है। भक्त का एक क्वालिटी होता है आत्मवत। आत्मवत का अर्थ होता है कि वो परमात्मा की तरह बिहेव करता है, अर्थात सबके प्रति एक समान उसका व्यवहार होता है, किसी को अधिक किसी को कम ऐसा नहीं, सबको वो भगवान का अंश के रूप में देखता है, सबके कल्याण की सोचता है। सो ये है ब्रह्म कर्म स्वभाव है। इन शॉर्ट, इवन वी टुक लिटल मोर टाइम बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। श्रद्धा होना चाहिए। अस्तिक्यम का अर्थ होता है कि कई बार भक्त लोग को ऐसा श्रद्धा नहीं होता है कि हम लोग ये सब कर रहे हैं, लेकिन ये सब क्या सही है? अगर श्रद्धा अगर किसी की स्ट्रांग होती है तो स्वाभाविक रूप से उसके आध्यात्मिक प्रगति होने लगती है। लेकिन हमारी श्रद्धा कमजोर होती है, इसलिए शास्त्र पे विश्वास कम होता है हमारा, वैष्णव पे विश्वास कम होता है, गुरु पे विश्वास कम होता है, वैष्णव या गुरु या शास्त्र के शिक्षाओं या उनके आदेशों पर विश्वास कम होता है। तो फिर विश्वास कहीं तो होना चाहिए ना, तो फिर विश्वास कहाँ होता है हमारा? भौतिकवादी लोगों के ऊपर, उनके वाणियों के ऊपर, न्यूज मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उन पर विश्वास ज्यादा होता है। सो दिस वॉज, अगर कोई ब्राह्मण बनना चाहता है तो ये क्वालिटीज को अनुकूल करना पड़ता है, तब वो व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। हो सकता है कि एकदम से नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, ये हो जाएगा।
तो प्रभु, इसीलिए क्या प्रभुपाद ने ये बनाया था नियम कि हरिनाम और ब्राह्मण दीक्षा के बीच में इतना पर्टिकुलर समय चाहिए? तो जैसे हरिनाम जब ऑफकोर्स उसके पहले भी चार नियम के पालन करते हैं, मगर ये क्वालिटीज तो चार नियम से भी बहुत ऊपर है।
yes.
तो मतलब ये छह महीना या उस टाइम पे छह महीना था शायद, फिर दो साल या चार साल जो भी, तो इज दैट द रीजन कि तब डेवलप करे?
well, प्रभुपाद ऐसा चाहते थे कि हाँ, मेन दीक्षा तो ब्राह्मण दीक्षा ही होती है, हरिनाम दीक्षा में नाम बदला जाता है, लेकिन जो मेन दीक्षा है वो ब्राह्मण दीक्षा ही होती है। और हरिनाम के बाद थोड़ा ऑब्जर्वेशन का एक टाइम रहता है जिसमें गुरु और संस्था उस भक्त के आचरण को ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद फिर छह महीना आठ महीना साल भर, उसके बाद फिर टेम्पल अथॉरिटी खुद प्रोसेस में, जो भी प्रोसेस है उसमें वो हस्तगत करेंगे, और तब जाके वो फिर क्लियर होगा कि ये कैंडिडेट दीक्षा लेने के योग्य है या नहीं है ब्राह्मण इनिशिएशन से। और इसलिए इस्कॉन में ब्राह्मण इनिशिएशन के लिए प्रभुपाद चाहते थे कि भक्ति शास्त्र कंपलसरी होना चाहिए। लेटर्स में भी पढ़ाया, आप पढ़िए, लेटर्स में भी लिखा है कि भक्ति शास्त्र कोर्स कंपलसरी क्यों, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, इट इज वन ऑफ द वेरी बेसिक कोर्स है। भगवद गीता पढ़ाना, आई मीन पढ़ना और ये तीन अन्य, दिस इज फंडामेंटल बेसिक कोर्स है। साल साल डेढ़ साल भर का चलता है, लेकिन आपके पूरे जीवन में से साल डेढ़ साल ही आप दे रहे हो। और इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग है भगवद गीता को, अगर हम नहीं सीखते तो हम क्या सीखते हैं, फिर कुछ नहीं सीख रहे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सो इसलिए इट इज मस्ट कर दिया फिर प्रभुपाद जी ने, और जीबीसी ने भी इसको मस्ट कर दिया कि नो चॉइस, मस्ट फॉलो। ओके, सो नाउ दिस इज ब्राह्मण इनिशिएशन के ब्राह्मण क्वालिटीज। अब क्षत्रिय के विषय में बढ़ते हैं, पढ़िए।
वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व आ क्षत्रियोना प्रभावी गुणों छे।
शौर्य, वीरता, हीरोइक, शौर्य होना चाहिए क्षत्रिय। शौर्य, तेज, सब प्रपद इसके विषय में कहते हैं कि क्षत्रिय जो होते हैं उनमें शौर्य पाया जाता है। शौर्य का अर्थ क्या होता है कि जैसे महाराज परीक्षित, उन्होंने क्या देखा कि कली जो है वो गाय को मार रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई अभी ये मिनिस्टर को बुलाओ, फोन करो, ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं। सीधा तलवार निकाला तुरंत, और तलवार निकाल करके उसको बोला, ए दुष्ट, कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो इसको, मेरे राज्य में तुम गाय की हत्या कैसे कर सकते हो। इसको बोलते शौर्य। पहले के समय में जो राजा होते थे, जो क्षत्रिय, उनमें शक्ति होती थी, पावर होता था, वो किसी से डरते नहीं थे, भय नाम की तो चीज ही नहीं होती थी उनमें। और हीरो एक शौर्य होता है, सीधा तलवार निकाला उसको दंड देने के लिए, तो ये क्षत्रिय में देखा जाता है। आज के समय में ऐसा नहीं देखा जा रहा है दुर्भाग्य से। जो राजा बनता है आज, वो राजा बनने योग्य ही नहीं होता अगर वो उसमें शौर्य नहीं है, तो राजा कहां से बन सकता है वो, उसमें शौर्य नहीं है तो। राजा बनने के तो प्रभुपाद कहते थे कि हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, गाय को भी जीने का अधिकार है, तो उनकी हत्या क्यों हो सकती है। जैसे महाराज परीक्षित ने ऐसा देखा, उस रास्कल को देखा, तो तुरंत ही उन्होंने कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, क्यों कर रहे हो। इसलिए क्षत्रियो को कभी कभी मृगया करने के लिए जाने देते थे, क्षत्रियो को अलाउ किया जाता था। वो मृगया करने के लिए जाते थे, जैसे आपको पहले लेबोरेटरी में जाते टेस्ट करते हो ना, वैसे वो लोग को भी मृगया के लिए भेजते थे शौर्य की परीक्षा करने के लिए। तो क्या करते थे कि किसी मनुष्य पर अपना शौर्य दिखाने से पहले वो हिंसक प्राणियों पर अपना शौर्य दिखाते थे कि जो दूसरे लोग को खा जाते थे, विशेष करके जहां पर बहुत ज्यादा संख्या बढ़ जाती है किसी प्राणियों की, उसको बैलेंस करने के लिए ये लोग मुर्गिया करते थे ऐसा। तो क्षत्रिय को कभी कभी हंटिंग करने का परमिशन दिया जाता था, और लोग क्या करते थे, जंगल में जाकर के शेर, बाघ, ऐसे प्राणियों के साथ फाइट करते थे। और तो अभी तक था, प्रभुपाद के समय प्रभुपाद लिखे केवल 25 साल पहले, 1950 के आसपास, उस समय भी जयपुर का जो राजकुमार प्रिंस, वो बिना किसी हथियार के बाघ के साथ, शेर के साथ, बिना किसी हथियार के फाइट करता था। कोई हथियार नहीं, हाथ से फाइट करता था, बिना किसी हथियार से। तो ये क्षत्रिय का प्रभाव, तो एक प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि क्या ये अच्छा था, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये अच्छा है नहीं, ये रिक्वायर है, ये आवश्यक होता है, क्योंकि उनको राजा बनना होता है और राजा में ये शौर्य होना चाहिए। फिर प्रभुपाद ने तेज के विषय में कहा, तेज तेज जो होता है उसका होता है शक्ति, पावर, बहुत इन्फ्लुएंस, प्रभाव, तेज उसको बोलते हैं। तो राजा कभी भीख नहीं मांगता, मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, मुझे वोट दीजिए, वोट के लिए हाथ फैला के नहीं घूमता है, क्योंकि क्षत्रिय या राजा मांगने का उसको आता ही नहीं है। मांगना क्या होता है, प्रभुपाद सेठ दिस थिंग, व्हाट इज बेगिंग, दे डोंट नो, उनको आता ही नहीं है। मिस मांगना क्या होता है, दे डोंट नो मांगना, तो ऐसा वो बोले मुझे वोट दीजिए, मुझे राजा बनना, ऐसा होता ही नहीं है। वो उनका उनका सिस्टम कैसा होता है, मुझे राजा स्वीकार करो नहीं तो फाइट करो, या तो तुम मेरे सामने हाथ जोड़ के नमस्कार करो या फिर अपना हथियार निकालो और फाइट करो, तो ऐसा राजा होता है। आजकल ऐसे राजा को लोग सरमुख हथियार बोलते हैं, सरमुख हथियार, सरमुख हथियार बोलते हैं, पर हिटलर जैसा है, ऐसा बोलते हैं, मनमानी करता है, काट देता है, मार देता है, वो अपने मनमानी करता है। तो एक्चुअली राजा ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी किसी की नहीं सुनता है, उसका प्रभाव इतना हो स्ट्रांग होता है, या मुझे एक्सेप्ट करो या तो खत्म हो जाओ, दिस इज क्षत्रिय मेंटेलिटी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि फिर वो एक्सप्लोइट करता है, इसके लिए नहीं होता है। राजा का ये जैसे वैवस्वत मनु कर्दम मुनि के पास जब गए थे तो उन्होंने उनका स्वागत किया ये कह करके कि हे महाशय, कि मैं जानता हूं आप यहां पर विचरण इसलिए कर रहे हो कि अलग अलग वर्ण के जो लोग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सारे वर्ण के जो लोग हैं वो अपने अपने निजी धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए एक क्षत्रिय पूरे, यही उसका काम है। क्षत्रिय का काम क्या होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये लोग अपने अपने कार्य ठीक से कर रहे हैं कि नहीं। कभी कभी राजा जो होता है वो डिस्गाइज में जाता है, डिस्गाइज में का अर्थ क्या होता है, वेश बदल करके जाता है, केवल ये देखने के लिए कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब लोग अपने अपने निजी कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके राज्य में नियम भंग नहीं हो सकता है। फिर युद्धे च अपलायनम, अपलायनम, जो युद्ध में पलायन नहीं करते, युद्ध में भाग नहीं, युद्ध देखा तुरंत भाग गया, ऐसा नहीं होता है। युद्ध च पलायनम, प्रॉपर एग्जाम्पल दे रहे कि पहले के समय में जब युद्ध होता था तो लीडर्स के बीच में फाइट होते थे, वो लोग फेस टू फेस सामने लड़ते थे। युद्ध का अर्थ एकदम सिंपल होता है, एक पार्टी जीतेगी और दूसरी पार्टी खत्म हो जाएगी, इस प्रकार से नहीं होता था कि अगर कोई, जैसे कोई राजा खुद ही जाता था लड़ने और राजा खत्म तो युद्ध खत्म, ऐसा नहीं कि भी राजा चला गया अभी बाकी का बचे हुए भी मारेंगे, ऐसा नहीं होता है, राजा खत्म तो युद्ध खत्म, ये सिस्टम था। सो जो लोग राजनीति में या राजपाठ में ध्यान रखना चाहते थे, जिनका ये इच्छा होता था, उनको बहादुर बनाया जाता था, बहादुर निर्भय, वो सामने जाते थे। ऐसा नहीं कि प्रॉपर एग्जाम्पल देते है, ही हैज टू गो, वो पर्सनली जाकर के डायरेक्शन देते कि यहाँ अब ऐसा करना पड़ेगा, अब ऐसा करना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए। बट व्हाट इज डूइंग दैट नाउ, हु इज डूइंग दैट नाउ, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इज वेरी कंफर्टेबल सिटिंग इन दिस चेयर, रक्षा मंत्री होता है या राजा होता है वो अपने कैबिन में, कुर्सी में बड़े आराम से बैठा होता है, और बेचारे पुअर सोल्जर जो होते हैं वो वहां पर रणभूमि में फाइट कर रहे जाते हैं, दिस इज नॉट राइट, ए पर्सन ही हैज टू गो, जस्ट लाइक बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, अर्जुन और दुर्योधन आमने सामने थे, ऐसा नहीं कि हस्तिनापुर में बैठा रहा और ये उपवलो में बैठा रहा और वहां से फिर सैनिक सैनिक भेजते रहे, जैसे जैसे आर्मी खत्म होती दूसरी आर्मी जाती थी, ऐसा नहीं होता था, दे पर्सनली यूज्ड टू गो। फिर क्या था, युद्ध चापरायणम
दानम
दानम, ओके, दानम का अर्थ होता है जेनरस होना चाहिए, जेनरस मीन्स जेनरस का अर्थ क्या होता है कि उदार, वो लोग नीति को पालन करते हैं, जो फॉलो धर्म वो नीति पालन करते हैं, बिना नीति के काम नहीं होता है, वो सिद्धांत को फॉलो करते हैं, बिना सिद्धांत के युद्ध नहीं होता है। जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तो दिन के समय में युद्ध होता था, लेकिन जैसे अंधकार हो जाता था तो सूर्यास्त हो जाता था, तो फिर लोग निर्भय होकर के घूम सकते थे, कोई युद्ध नहीं, कोई युद्ध नहीं, यहाँ तक कि आमने सामने की दो सेनाएं आपस में बैठ के भोजन भी खाते थे, दोनों सेना के सैनिक साथ में, जैसे मैच क्रिकेट मैच या कोई भी आप देखते हो खेल में, तो दो खिलाड़ी होते हैं आमने सामने, खेल आमने सामने खेलते हैं, लेकिन वो मित्र होते हैं, साथ में खाते भी है, बैठते है, सब करते साथ में, तो इस प्रकार के क्षत्रिय इस प्रकार के विचार के होते हैं।
वो रथी रथी से युद्ध करेगा,
हाँ वो उसके लेवल के नीचे उसे युद्ध नहीं करते वो लोग, वो उनका सिस्टम वो प्रिंसिपल सिद्धांत है उसको फॉलो करते, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर के विषय में प्रॉपर ने कहा था कि एक चोर को पकड़ा गया था, तो वो चोर को अलेक्जेंडर के सामने लाया गया था, अलेक्जेंडर ने जजमेंट देने वाले थे, तो चोर ने कहा कि आप क्यों मुझे सजा देना चाहते हो, बोले मुझ में और आप में क्या अंतर है, आप मैं छोटा चोर हूं आप बड़े चोर हो, आप भी तो चोरी हो और मैं छोटा चोर हूं, तो मुझे क्यों सजा देना चाहते हो। तो अलेक्जेंडर ने सोचा कि बात तो इसकी सही है, मैं बड़ा चोर हूं ये छोटा चोर है, तो उसने कहा ठीक है छोड़ दो उसको। तो ये इस अलेक्जेंडर वाला एग्जांपल में क्या है कि सिद्धांत को एग्री करना, एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए वो राजा नहीं बनता है, वो ऑर्गेनाइज करने के लिए राजा बनता है, कि ऑर्गेनाइज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्थित होना चाहिए, उसके लिए राजा बनता है। और ईश्वर भाव, ईश्वर भाव का अर्थ क्या होता है, कंट्रोल, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी वो होनी चाहिए, नहीं तो वो कंट्रोल नहीं, वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता है। फिर प्रभुपाद से इन फर्दर इसके विषय में वी आर रीडिंग टेक्स्ट नंबर 43, या सो प्रभुपाद से वन मोर पॉइंट हियर, दिस फ्यू लाइंस आर गुड, दिस इज फ्रॉम मॉरिशस 1925, प्रभुपाद सेज As long as it is not available, we must make the best of the situation. क्या इसका अर्थ होता है, जब तक ये चार वर्ण का सिस्टम पॉसिबल नहीं हो रहा है, इट्स नॉट अवेलेबल, वी मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन, जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां सराउंडिंग है उसका बेस्ट सिचुएशन का उसका बेस्ट उपयोग करना चाहिए, वी मस्ट मेक द बेस्ट ऑफ द सिचुएशन, दैट इज अनदर थिंग, ये एज लॉन्ग एज नॉट अवेलेबल वो अलग अन्य बात है, बट ग्रेजुअली वी शुड डेवलप अ सोसाइटी वेयर ऑल दिस अननेसेसरी रबिश इज रिजेक्टेड, लेकिन हमें क्रमशः धीरे 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 हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए कि जिसमें ये सब प्रकार की जो फालतू वस्तुएं है वो उसको तिरस्कार किया जाए। तो ये दिस इज द आइडिया, जो लोग कार का मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उनको करने देना चाहिए, लेट दोज हु आर इंटरेस्टेड मैन्युफैक्चर अ कार एंड वी विल टेक एडवांटेज, हम उसका फायदा उठाएंगे, हम कार नहीं बनाएंगे, इसको बोलते हैं अजागर वृत्ति। अजागर वृत्ति का अर्थ होता है कि चूहा जो होता है वो छेद करता है, वो होल बनाता है, और सांप उस छेद के अंदर जाता है, चूहे को मार देता है और उस छेद में खुद रहता है। सो लेट दिस रास्कल मैन्युफैक्चर मोटर कार, जब हमें आवश्यकता होगी मोटर कार की तो हम उनकी मोटर कार लेंगे और भाग जाएंगे। विल टेक इट एंड टेक इट फ्रॉम देम एंड राइड अवे। वी आर नॉट गोइंग टू मैन्युफैक्चर। आई डिड नॉट कंस्ट्रक्ट दिस हाउस, समबडी सम माउस मैंने ये मकान का निर्माण नहीं किया, किसी ने किसी चूहे ने बनाया है। जस्ट लाइक दैट प्रभु एक एग्जाम्पल दे रहे। वी हैव एंटर्ड इट एंड दैट्स ऑल, हम उसके अंदर घुस गए। दिस इज गोइंग ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह हो रहा है ये। यू नो जॉर्ज हैरिसन, ये अर्न मनी विद सच हार्ड लेबर। जॉर्ज हैरिसन को आप जानते हो, प्रभुपाद कह रहे हैं उसने बड़ी मेहनत करके धन कमाया और उसने लंदन में 55 लाख का एक बड़ा हवेली उसने हमें दान में दिया। दूसरा एक लड़का है अल्फ्रेड फोर्ड, जो हेनरी फोर्ड का प्रपौत्र है, वो भी हमें पैसा अभी भी दे रहा है। सो जो लोग भौतिक चीजों से आकर्षित है उन लोगों को हम धन देने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, हमें धन दीजिए। जहां तक हमारा सवाल है, हम कृष्ण भावनावर्तन बड़े सरल जीवन को जीना चाहते, वो ब्राह्मण माना जाता है। वो बड़ा बड़ा हाउस, बड़े बड़े महल नहीं बनाता, वो बड़े बड़े चरित्र निर्माण करता है। बड़े वो इज नॉट आफ्टर बिग पैलेस बट इज आफ्टर बिग कैरेक्टर, वो चरित्र के चरित्र का निर्माण करता है। एंड क्षत्रिय और वैश्य वो लोग उनके पास आते हैं, ब्राह्मणों के पास, और वो लोग कहते हैं कि सर आप आइए हमारे यहाँ पर, आपकी आवश्यकता के अनुसार हम आपको कुछ धन देंगे, आपका निर्वाह इससे होगा। प्रभुपाद से दैट प्लीज कम एंड सिट डाउन, वन हु इज अनेबल टू बिकम अ ब्राह्मण लेट हिम बिकम अ क्षत्रिय, दिस इज द सिस्टम। वी आर टीचिंग दम फर्स्ट क्लास ब्राह्मण, हम सबको फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, बट हु इज अनेबल टू बिकम ब्राह्मण लेट देम बिकम क्षत्रिय, उनको क्षत्रिय बनने दीजिए। इफ ही इज अनेबल टू बिकम क्षत्रिय लेट देम बिकम वैश्य, उसको वैश्य बने दीजिए। इफ ही इज अनेबल टू बिकम वैश्य यू नो लेट हिम रिमेन शूद्र, उसको शूद्र रहने दो। बट देयर शुड बी एन आइडियल क्लास, सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी ऑफ ब्राह्मणस, देन पीपल विल बी बेनिफिटेड। सब लोग शूद्र है, रास्कल है, प्रॉपर सेट I mean, sorry, if everyone is Sudra rascal, how these people will be benefited? इन लोगों का अगर सभी शूद्र होंगे तो इनका उद्धार कैसे हो पाएगा, लोगों का लाभ कैसे हो सकता है, उनको तो आता ही नहीं जीवन कैसे दिया जाए। इसलिए ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है कि जो चरित्र बनाएंगे सबका। So this was the idea behind, you know, क्षत्रिय मेंटेलिटी। तो वो डोमिनेटिंग होते हैं, डिटरमिन होते हैं, बहुत दृढ़ संकल्प होते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं। वो सब यूज करते हैं, साम दाम दंड भेद सब यूज करते हैं। ओके सो So I should show this to go. Shall we continue or we should? Vaishya? Sudra.
Yes.
Yeah. So, give me some water.
वो ये ब्राह्मण जैसे आपने बताया तो मैंने ये भी सुना है पठन पाठन ये ब्राह्मण में आता है तो ये ज्ञान भी
क्या है? Six qualities. यजन याजन पठन पाठन दान विनिग्रह।
हाँ तो ये इसको यहाँ पे कोट करे तो कहाँ ज्ञान विज्ञान में
यस ज्ञान विज्ञान में आता है। लेकिन ब्राह्मण का एक लक्षण ये होता है कि वो सारे चारों वर्णों का गुरु होता है। ब्राह्मण जो होता है चाहे वो जो क्षत्रिय होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो लोग भी उसका आदर करते हैं। फिर जो व्यापारी वैश्य होता है वो भी आदर करते हैं। तीनों वर्ण उनका आदर करते हैं, तीनों वर्ण उनकी सहायता करते हैं, तीनों वर्ण उनका मेंटेन करते हैं। और इनका काम होता है कि बाकी के सारे तीनों वर्णों को कैरेक्टर देना, शिक्षा देना, उपदेश देना, ये उनका काम है। इसलिए यजन याजन, यजन याजन का अर्थ होता है यज्ञ करना, खुद भी करता है दूसरों को भी करवाता है, सिखाता है कैसे यज्ञ करना। फिर पठन पाठन, तो खुद भी शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र पढ़ाता है दूसरों को, ये पठन पाठन। और क्या दान विनिग्रह, तो वो दान लेता है और दान देता भी है। जो दान उसको देते हैं उसको मेंटेनेंस करने के लिए वो एक्सेप्ट करता है, और उसके पास जो कुछ है जैसे उसके पास ज्ञान है तो ज्ञान दान के रूप में देता है। लाइक दैट। तो ये 6 गुण है, फिर ये 9 गुण है, फिर श्रीमद् भागवत में 12 क्वालिटीज मेंशन किए गए हैं। लाइक दैट। Okay, so let us talk about Vaishyas. We continue 10 minutes. Yeah, we can continue next Monday. We can do next Monday. Okay, so अभी हमने केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के विषय में चर्चा किया, वैश्य शूद्र, और फिर आगे इसका एक्सरसाइज करेंगे वर्ण आश्रम के ऊपर। We'll do next time. So we stop here. पढ़िया।
कृषि करना, गोर रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। उन शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों को सेवा करना, अन्यों की सेवा करना।
यस, तो वैश्य का कर्तव्य है कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य, तीन चीज। अर्थात कृषि का अर्थ होता है खेती, अन्न उत्पादन करना, मैन्युफैक्चरिंग। एक वैश्य ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में नहीं होते, नटबोल्ट बनाने वाले नहीं होते, उनका काम है कृषि अर्थात खेती करना, क्योंकि खाने के लिए ही अन्न चाहिए, नटबोल्ट से जीवन नहीं होता है। फिर गौरक्षा, गौरक्षा का अर्थ होता है गायों को प्रसन्न रखना, गायों की सुरक्षा करना। तो ये संसार के लिए जो जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आवश्यकता होती है वो यही होती है, कृषि और गौरक्षा और वाणिज्य। मैक्सिमम वो क्या करता है, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का अर्थ होता है माल, जैसे यहाँ से धन, ये अन्न लिया, ये गेहूं लिया, ये सब चीज है, या फिर और कुछ भी सामान, उसको ट्रेड करता है इधर से ला करके। मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इज ऑल डन बाय गॉड। वो मैन्युफैक्चरिंग जो हम लोग इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डाल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, लेकिन साधारण जो हम वैदिक लाइफ स्टाइल में मैन्युफैक्चरिंग की सिस्टम ही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय गॉड, ओनली ट्रेडिंग इज डन बाय वैश्यस। सो पहले के समय में गायों की जो सेवा होती थी वो इस तरह से होती थी कि उनको, गाय को ऐसा पशु माना जाता है कि वो बिल्कुल मनुष्य जैसा है, उसका एकदम नेचर वगैरह सब, और उसको नंबर वन फर्स्ट क्लास पशु माना जाता है, फर्स्ट क्लास अर्थात सबसे उत्तम। तो उनका श्रृंगार होता था, जैसे उनको टर्मरिक पेस्ट, ऑयल और हल्दी उसको मिक्स करके उनपे लगाया जाता था, और अलग अलग प्रकार के मिनरल से डेकोरेट किया जाता था, और मोर पंख से उनको श्रृंगार किया जाता था, और उनके गले में फूल की माला पहनाई जाती थी, और सोने चांदी के आभूषण उनको पहनाए जाते थे, उनको सिल्क के कपड़े पहनाए जाते थे गायों को, और ये रोज होता था, दिस वॉज एवरीडे थिंग्स। सो ये वृंदावन में इस तरह से लोग जीते थे। तो इसका अर्थ ये दिखाता है कि ये रिच कम्युनिटी इस तरह से इमेजिन होती थी, हमें आशा ये अनुमान नहीं लगा सकते कि लोग कितने रिच थे, और उनके रिच होने का जो साधन क्या था, केवल गायों की रक्षा और खेती, अन्यथा और कुछ नहीं। ओनली काउस, अगर काउस वेर सो हैप्पी, युधिष्ठिर महाराज के समय में गाय इतनी प्रसन्न रहती थी कि वो जो ग्राउंड होता था मरी, उसको दूध से भीगा कर देती थी। दिस वॉज इंडियन सिविलाइजेशन, सो दूध छलकता रहता था उनके आंचल से। सो अभी लोग वैदिक जीवन पद्धति को त्याग कर रहे हैं और भगवद गीता की शिक्षाओं को समझ नहीं रहे हैं, इसलिए दुखी हो रहे हैं। लेकिन अगर वैदिक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो संसार में कोई समस्या आ ही नहीं सकती। बलराम जो है वो कृषि का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वो हल उनके हाथ में है तो कृषि का प्रतिनिधित्व करते हैं, और कृष्ण गोरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कृष्ण और बलराम ये दोनों कृष्ण कृषि गोरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीन समय में इवन दसवें स्कंध में भी आप प्राप्त करते हो कि किस तरह से यशोदा माता, रोहिणी माता, उनको सबको पता था कि गाय का उपयोग करके, गाय की चीजों का उपयोग करके किस तरह से बच्चों की सुरक्षा की जाती थी, किस तरह से समाज की सुरक्षा की। दे न्यू ऑल दिस आर्ट्स, गाय के माध्यम से कितनी सारी सुविधा प्राप्त होती है, बहुत सारी सुविधा प्राप्त होती है। लेकिन ये कला लोग भूल गए हैं, अब उनको पता नहीं कि गाय का कैसे उपयोग किया जाता है। तो भगवान खुद भगवद गीता में इसके विषय में यहाँ पर बल भी दिए हैं। जैसे एग्जांपल प्रॉपर ने बताया कि वृंदावन के आसपास में बहुत सारे, अभी भी ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर लोग गायों की सुरक्षा करते हैं और उसी गाय का दूध का उपयोग करते हैं और उनके जो गोबर गोमूत्र होता है उसको जलाते हैं, उसका फ्यूल के रूप में उपयोग करते हैं। उनका खेती होता है जिसमें वो थोड़ा अपनी आवश्यकता का अन्न पका लेते हैं, उगा लेते हैं, और सफिशियंट मिल्क होता है, सफिशियंट ग्रेन होता है, ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स होती है, तो सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। प्रभुपाद जब कहते कि सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, दैट मीन्स अगर आप केवल ये दो चीज करेंगे, इकोनॉमिक की जब जहां कहीं भी बात आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, तो ये तीन चीज के माध्यम से सब समाज सब सिचुएशन का समाधान हो सकता है। भले लोग बोलते रहेंगे कि जीडीपी इतना डाउन हो गया है, या फिर हमारी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, फेल हो रही है, या फिर हम बहुत पीछे, ये सब कुछ ठीक हो सकता है केवल ये तीन चीज को ध्यान में रखा जाए, कृषि गौरक्षा और वाणिज्य। आज भी लोग कहीं ऐसे हैं जो एग्जांपल यूज ये फॉलो कर रहे हैं और सुखी है जीवन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो वैश्य का काम क्या है, देखो ब्राह्मण जो होता है वो धन नहीं कमाता, तो इसलिए उसका मेंटेनेंस वैश्य को करना पड़ता है। वो उसको दक्षिणा के रूप में, उसको दान के रूप में, उसका मेंटेनेंस वैश्य को होता है। क्षत्रिय जो होता है वो धन नहीं कमाता, क्षत्रिय अपना याचन जीवन निर्वाह करता है टैक्स कलेक्शन के माध्यम से। शूद्र होता है वो भी धन नहीं कमाता, क्योंकि उसको सैलरी दी जाती है वैश्य के माध्यम से, और क्षत्रिय जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो टैक्स भी वैश्य प्रदान करते हैं। तो एक रूप से देखा जाए तो संसार में जहां पर धन है वो केवल प्राचीन समय में केवल वैश्य के द्वारा ही प्राप्त होता था। वैश्य ही ब्राह्मण को दक्षिणा देते थे, वैश्य ही क्षत्रिय को टैक्स देते थे, और वैश्य ही शूद्र को सैलरी देते थे। अर्थात जो मेन मेंटेनेंस का काम था वो वैश्य को करना होता था। तभी आप हम यहाँ पर देख रहे, ब्राह्मण का काम था सबको अपने अपने कर्तव्य बताए और उनको भगवान के शरणागत होने की विधि सिखाए, ब्राह्मणिकल क्वालिटी सिखाए, फिर क्षत्रियो को क्षत्रिय धर्म सिखाए, वैश्य को वैश्य धर्म सिखाए, शूद्र को शूद्र सिखाए। क्षत्रिय का काम है ये सब सुचारू रूप से चलता रहे और समाज का ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाए, दुष्टों को दंड कैसे किया जाए, वो सब उनको सिखाया जाता है। वैश्य हमने अभी बताया उनका इस प्रकार का काम होता है, और शूद्र का काम होता है ये तीनों की सेवा करना, ये तीनों जो प्रकार के जो लोग हैं उन सबकी सेवा करना। और इसलिए कई बार उनको अंत्यज कहा जाता है, अंत्यजस नीच प्रकार नीचे प्रकार के लोग होते हैं, वो लोग चोरी करना, जुआ खेलना, फिर इलिसिट सेक्स, ये सब करना ये स्वाभाविक है उन लोगों के लिए। तो ऐसे लोग को पाप भी कम लगता है, यदि भी पाप लगता है लेकिन ब्राह्मण की तुलना में उनकी पाप कम लगता है क्योंकि वो है ही ऐसे। तो चारों की ड्यूटी बताई गई है, लेकिन कुछ मिक्स क्लासेस होते हैं। मिक्स क्लास का अर्थ क्या होता है कि दो डिविजन होता है, एक होता है अनुलोम और दूसरा है प्रतिलोम। अगर स्त्री उच्च वर्ण की है और पुरुष निम्न वर्ण का है और उन दोनों के बीच में अगर विवाह होता है तो प्रतिलोम माना जाता है, और पुरुष जो है वो उच्च वर्ण में है और स्त्री जो है वो निम्न वर्ण की है, उनके दोनों में अगर विवाह होता है तो वो अनुलोम माना जाता है। क्योंकि ये वर्ण हम एस्ट्रोलॉजिकल वर्ण की बात नहीं कर रहे कि ब्राह्मण वर्ण है, ये हम उसके गुण उसके क्वालिटीज की बात कर रहे हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल क्वालिटीज नहीं, उसके वास्तविक क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। अगर प्रतिलोम होता है तो वो वास्तव में वो अच्छा नहीं गिना जाता, लेकिन जो अनुकूल अनुलोम होता है जिसमें पुरुष ऊपर के वर्ण का होता है, अर्थात ब्राह्मण पति हो सकता है और क्षत्रिय पत्नी हो सकती है, या क्षत्रिय पति हो सकता है और वैश्य पत्नी हो सकती है, तो नीचे की ओर, तो इस प्रकार का जो मिक्सचर होता है अनुलोम का, जनरली उन लोग की जो संतानें होती है या फिर वो लोग होते हैं वो जनरली नाई का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, इस प्रकार के वो लोग काम करते हैं। कुछ अच्छे अंत्यजस भी होते हैं जो लोग चार प्रकार के पाप से दूर रहते हैं, उनको अंतवशयी बोलते हैं, अंतवशयी। और साधारण दृष्टि से देखा जाए तो क्षुद्रों में शराब पीना, सेम कास्ट में मैरिज करना, आई मीन इंटर मैरिजेस, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट अंत्यजस। सो इस प्रकार से शुद्ध प्रकार के जो लोग होते हैं उन लोगों में ये सब चीज कॉमन रूप से पाई जाती है। सो फार वी हैव डिस्कस अबाउट दिस डिफरेंट फोर वर्णास, और शुद्ध का काम है कि जो निम्न प्रकार का कार्य लेबर का काम होता है, जैसे मजदूरी करना, सफाई करना, या फिर झाड़ू लगाना, सड़कें साफ करना, इस प्रकार के जो निम्न प्रकार के कार्य होते हैं वो जनरल शुद्ध प्रकार के लोग करते हैं। श्रम का काम, अन्यों की सेवा करना। सो लाइक दिस वी हैव डिस्क्राइब्ड द फोर डिफरेंट वर्णास, और उसके आगे फिर वी डिस्कस फर्दर। आई मीन हमने केवल तीन श्लोक लिए, बट ये श्लोक अपने आप में बहुत डिटेल वाले थे, तो वी हैव टू टेक लिटिल लॉन्गर टाइम फॉर दिस। और जूम भी बार बार हमें कह रहा है कि अब बंद करो भाई, बंद करो। सो इज देयर एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी को कोई प्रश्न है?
एक क्वेश्चन है,
वन बाय वन। यस
हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। जैसे प्रेजेंट सेनर में हम देखते हैं, जैसे जो आजकल के जो नेता है वो नेतृत्व करते हैं लेकिन वो युद्ध नहीं करते। और जैसे हम देखते हैं कि जो आजकल जो ST ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होते हैं वो रिजर्वेशन के कारण ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं, तो वो जो बता रहे हैं उससे पूरा उल्टा है। नेता कभी तो युद्ध तो करे करता नहीं है, इसी प्रकार जो ST ST शूद्र है वो बन रहे हैं ब्यूरोक्रेट।
हाँ तो ये तो बात सही है कि जो शूद्र होते हैं वो लोग नेता, वैसे कलयुग में ये भविष्यवाणी की गई है कि जो शूद्र होंगे वो राजा बनेंगे, वो लोग राज्य करेंगे, पूरा सिस्टम चेंज कर देंगे। तो असली विचारधारा वाले जो होंगे राजा बने, वास्तव में उनमें हीरोइज्म नहीं होता है, वो चापलूसी से भीख मांग मांग के नेता बनते होते हैं और राजा बनते हैं, और उनमें हीरोइज्म जैसा कुछ नहीं होता है। और ऐसे जो लोग होते हैं दे आर एक्चुअली नॉट क्षत्रियस, दे आर सो कहे से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जैसे ब्राह्मण ने थोड़ी लिखा है, तो इसलिए मिजरेबल सिचुएशन कलयुग में, एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन एवरीथिंग। यस अमल सिद्धांत।
प्रभु जी आपने बोला कि चार वर्ण में जो वैश्य लोग होते हैं वो धन कमाते हैं, अभी वो धन किस तरह से कमाएंगे, मतलब दूसरे वैश्य लोगों से ही, वैश्यों से ही कमाते होंगे ना, मतलब
कृषि गोरक्षा और वाणिज्य
बाकी
यस
हाँ जी
यह कृषि गोरक्षा वाणिज्य इसके आधार से धन कमाते हैं।
हाँ वही, ये जो तीन आपने बताए थे कृषि गोरक्ष और वाणिज्य, उसी के प्रमाण मतलब इम्प्लीमेंटेशन से धन कमाते हैं, लेकिन
yes.
कमाना इन द सेंस इट इज नॉट लिटरल मनी, यू मीन टू से जो उत्पत्ति होती है उसको आप धन बोल रहे हैं ना?
नहीं वो भी धन है, जैसे सुवर्ण मुद्राएं होती है ये वो सब धन ही होता है, किसी के पास जमीन होती है
उनको कौन देता कौन है, मतलब दूसरे वैश्य लोग ही देते होंगे ना?
इज ऑल कम्युनिटी, वैश्य कम्युनिटी, दे आर मेजोरिटी कम्युनिटीज, लेकिन ये पहले पहले के समय में ये बार्टर सिस्टम से काम होता था सब कुछ, जैसे ब्राह्मण समाज जो होते हैं तो वो लोग उनके बच्चों को शिक्षा देते है, उसके सामने धन नहीं लेते, और इनके सामने ये लोग इनका पालन करते थे। लेकिन कोई ट्रेडिंग करते है जैसे गेहूं वगैरह वगैरह आपको जाना है तो दूसरों को देते थे और ट्रेडिंग करते थे, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में यू नो सुवर्ण मुद्रा दी जाती थी, फिर वो सुवर्ण मुद्रा से वो बाजार में जाके सामान खरीद सकते थे ऐसे, तो
हाँ।
तो इस तरह से वो सामान खरीदेंगे तो वो बेचने वाला वैश्य हो सकता है, उसके कस्टमर के रूप में कोई भी आ सकता है, ब्राह्मण भी आ सकता है, शूद्र भी आ सकता है ऐसे।
Okay, जो सेलर होता है वो वैश्य होता है, कस्टमर चाहे ये
होता है, कस्टमर कोई भी हो सकता है, लेकिन बिजनेस करने वाला ट्रेडिंग करने वाला जो होता है वो वैश्य होता है,
वैश्य ही होता है वही।
और कोई प्रश्न?
फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई मीन कैन शेयर व्हाट डिवोटीज वांट, क्योंकि कल अभी रामायण तो राम कथा तो भी मे बी तो इस तरह के टॉपिक पे डिवोटीज कैन डिस्कस इफ यू आर टू रिजल्ट दैट फ्रॉम मी।
ओके सो विल डिसाइड इट, यू कैन स्टार्ट इट सून एज पॉसिबल, एंड अब देखो अगर बकलो की इच्छा होगी तो विल कंटिन्यू फर्दर समथिंग, अदरवाइज वी विल टेक डिफरेंट ऑल्टरनेट क्लासेस और वॉट एवर दैट वी कैन डिसाइड लेटर ऑन, राइट?
ओके
हरे कृष्णा प्रभु जी, आई एम हैविंग अ सजेशन। एक्चुअली प्रभु जी मतलब जैसे श्रीमद भागवतम या